आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
ऑस्ट्रेलिया में आगामी फेडरल चुनाव में आवास एक अहम मुद्दा है। सत्ताधारी लेबर पार्टी और विपक्षी गठबंधन दोनों ने इस क्षेत्र में अपनी अपनी योजनाएं पेश की हैं। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीजी ने पहली बार घर खरीदने वालों के लिए सिर्फ 5% जमा राशि पर घर खरीदने की योजना की घोषणा की है। इसके साथ ही उन्होंने वादा किया है कि लेबर पार्टी 1,00,000 नए किफायती घर बनाएगी ताकि घर खरीदारों को राहत मिल सके।
I want young people and first home buyers to achieve their dream of home ownership. It will be available for homes valued all the way up to the average price in every city and region, and you won't have to pay a single dollar in mortgage insurance.
वहीं विपक्ष के नेता पीटर डटन ने प्रस्ताव पेश किया है कि पहली बार घर खरीदने वाले लोग अपनी टैक्सेबल कमाई में से मॉर्गेज के ब्याज भुगतान की किस्त को घटा सकेंगे, जिनसे उन पर आर्थिक बोझ कम होगा।
We will allow Australians to access up to $50,000 of their super towards a deposit for their first home. That allows home ownership earlier. Your super ultimately is your money. It's not the government's money.
दोनों नेताओं का मानना है कि उनकी योजनाएं खास तौर से युवाओं और पहली बार घर खरीदने की चाह रखने वालों के लिए मददगार साबित होगी। यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न से रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी विशेषज्ञ प्रोफेसर पीयूष तिवारी आज इसी विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं। प्रोफेसर तिवारी, आपका SBS हिंदी में स्वागत है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में घरों की कीमतें लगातार क्यों बढ़ती जा रही हैं।
धन्यवाद शशि, आपके शो पर आने का मुझे बहुत खुशी हुई है। जो सवाल आपने पूछा है कि ऑस्ट्रेलिया में घरों की कीमतें क्यों बढ़ती जा रही हैं, कि अगर पिछले 2-3 सालों में देखा जाए तो हर शहर में कीमतों में बढ़ोतरी नहीं हुई है। बड़े शहर जैसे सिडनी और मेलबर्न हैं तो उनकी कीमतें प्री कोविड लेवल से या फिर पोस्ट कोविड जो कि 2021 है उसके हिसाब से उतनी नहीं बढ़ी। 2021-22 के समय में, मतलब जैसे कि फरवरी या मई का जो समय था 2022 का, उसके हिसाब से कीमतें अगस्त 2023 में काफी कम हो गई थी, लेकिन धीरे धीरे ये फिर ऊपर जाने की तरफ मुड़ी हैं। लेकिन इनका लेवल जो है वो अभी भी 2020 या 2020 से पहले के लेवल के बराबर नहीं हुआ है। दूसरी चीज ये है कि अगर हम क्लियरेंस रेट देखें, क्लियरेंस रेट का मतलब ये होता है कि जो घर बिकने के लिए मार्केट में आते हैं उनमें से कितने बिक पाते हैं, उनका जो परसेंटेज है वो करीब 75% है। वो भी अभी इमीडिएटली पोस्ट कोविड लेवल जो कि करीब करीब 80-85% हो गया था उसके हिसाब से काफी कम है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कीमतों में उतनी गति नहीं आई है जितनी कि पहले हुआ करती थी। मार्केट काफी स्टेबलाइज्ड है।
क्या इसमें कोई सप्लाई डिमांड का भी कोई रोल है?
हाँ, इसमें सप्लाई और डिमांड का तो रोल है ही है। अगर हम अपार्टमेंट की सप्लाई देखी जाए, जैसे कि मेलबर्न में 2019 में जो वार्षिक सप्लाई नए अपार्टमेंट की होती थी वो करीब 14,000 के आसपास थी, लेकिन पिछले 2-3 सालों में इनकी जो एवरेज सप्लाई है वो करीब 1,500 से 2,000 के बीच में है। और जो पाइपलाइन है, पाइपलाइन का मतलब ये होता है कितने और नए अपार्टमेंट अगले कुछ सालों में आएंगे, तो उसकी पाइपलाइन भी उतनी ज्यादा नहीं है, वो करीब करीब 1,000-2,000 के बीच में ही है। तो जो 2019 के कंपैरिजन में सप्लाई में काफी कमी आ गई है।
चुनाव के दौरान पार्टियों ने लोगों को किफायती घर मुहैया कराने की बात कही है, आपको क्या लगता है कि इससे क्या असर होगा प्रॉपर्टी बाजार पर?
देखिए, इससे मेरा तो अनुमान ये है कि सरकार के द्वारा मुहैया कराए गए घर कितने भी प्रॉमिसेस किए जाएं उतने नहीं होंगे जो कि मार्केट को बदल सके। यहाँ पर मार्केट ड्रिवन पॉलिसी चाहिए, मार्केट फ्रेंडली पॉलिसी चाहिए। लेकिन पिछले अगर कुछ साल में देखा जाए, जैसे विक्टोरिया का ही एग्जांपल ले लिया जाए, तो बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज आई हैं जिसकी मार्केट पे असर उल्टा ही पड़ा है। इनमें जैसे कि एक लैंड टैक्स थी, विक्टोरियन गवर्नमेंट ने जो लैंड टैक्स की दर थी वो 2.55 से बढ़ाकर 2.65% कर दी, और जो उसका थ्रेशोल्ड लेवल होता था जिसके ऊपर की टैक्स लगता है वो 300,000 हुआ करता था, उसको घटा के 50,000 कर दिया। इससे ये हुआ कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो थी वो इस लैंड टैक्स के नेट में आ गई। ये वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि इन्वेस्टर्स होल्ड करते हैं, जो कि रेंटल प्रॉपर्टीज ऑल्सो रेंटल प्रॉपर्टी कही जाती है। तो इसका मार्केट पे तो उल्टा ही असर पड़ा। दूसरी एक और कर आई थी जिसे बोलते हैं कि अनुपस्थित मकान मालिक कर, उसकी दर बढ़ाकर 2-4% कर दी। इसका जो है जो विदेशी बायर्स होते हैं उन पर फर्क पड़ता है, क्योंकि वो लोग जनरली अनुपस्थित मकान मालिक होते हैं। तीसरा जो टैक्स था वो था खाली मकान लैंड टैक्स। इस पे भी इसको भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। पहले ये मेलबर्न मेट्रो में हुआ करता था, अब इसको बढ़ाकर पूरे विक्टोरिया में कर दिया गया है। इसकी दर है, अगर आपका घर 1 साल खाली है तो 1% टैक्स लगेगा, 2 साल खाली है तो 2%, 3 साल खाली है तो 3%। अगर इन सबको ऐड किया जाए, इन सबको जोड़ा जाए, तो जो होल्डिंग कॉस्ट है एक इन्वेस्टर्स के लिए काफी बढ़ गई है। इन सब का तो मकान की सप्लाई पर नेगेटिव ही असर पड़ेगा।
ये कहा जाता है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स के ज्यादा घर खरीदने के कारण यहाँ शॉर्टेज हो जाती है, जिससे घरों के दाम बढ़ जाते हैं।
मुझे नहीं लगता है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स के घर खरीदने से यहाँ पर घरों के दामों पे उतना फर्क पड़ता है। फॉरेन इन्वेस्टर्स जनरली वो घर खरीदते हैं जो कि वो रेंट कर सकते हैं, वो इन्वेस्टर डिमांड होता है। ये ज्यादातर अपार्टमेंट होते हैं या उस तरह के होते हैं ना, उन सब का जो है जनरल मार्केट पे, जैसे सिंगल फैमिली ड्वेलिंग यूनिट्स पे और इन सब पे उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता।
माइग्रेशन को लेकर भी कहा जाता है कि इसके कारण भी घरों के दाम बढ़ जाते हैं।
माइग्रेशन जो अगर हम पहले देखा जाए 2019 से पहले, तो करीब 130-135,000 लोगों की संख्या बढ़ी थी माइग्रेशन के कारण। उसके बाद कोविड के टाइम पर तो माइग्रेशन नहीं हुआ। अभी जो है जो माइग्रेशन उसके बाद के पीरियड में भी देखा जाए तो वो पहले 2019 के लेवल से कम ही है, अभी जो है करीब 120,000 के आसपास है। तो अगर इन सब का इम्पैक्ट देखा जाए, माइग्रेशन का इम्पैक्ट, सो माइग्रेंट्स जो है उतने ज्यादा प्रॉपर्टी मार्केट को इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं जितना कि बताया जाता है।
मैं आने वाले कुछ सालों में आपको क्या लगता है कि प्रॉपर्टी मार्केट किस तरफ जाएगा, खासतौर से अभी चुनाव के दौरान जो विभिन्न पार्टियों की नीतियां हैं, इनके नतीजों में आपको क्या लगता है किस तरफ मार्केट जाएगा?
ये मुझे तो लगता है कि मार्केट पे जो जिस तरह की पॉलिसीज बताई जा रही हैं, जैसे कि इतने सारे जो टैक्सेस लगे हुए हैं और उसके अलावा जो रेस्ट्रिक्शंस जो बायर्स के ऊपर हैं, उन सब का नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। लेकिन अगर ये देखा जाए कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और लेबर कॉस्ट ये भी धीरे धीरे कम हो रहे हैं, क्योंकि शायद जो अभी जो टैरिफ वॉर चल रहा है उसके कारण मटेरियल कॉस्ट जो कि हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं उसका शायद दाम कम होगा, तो हो सकता है कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में कुछ कमी आए जिसके कारण सप्लाई जो नए मकानों की है उनकी दरों में कुछ कमी आए। तो लगता यही है कि जो घरों के दाम हैं या तो स्टेबलाइज्ड रहेंगे या फिर उनमें थोड़ी सी कमी आएगी।
तो एक आम आदमी जो कि पहली बार घर खरीद रहा है
जी,
उसके लिए आपको क्या लगता है कि आने वाला समय कैसा रहेगा?
मुझे तो ये लगता है कि ये अभी बायर्स मार्केट है। जो एक आम आदमी है वो अगर घर खरीदना चाहता है और अभी इंटरेस्ट रेट की जो इंटरेस्ट की जो दरें हैं वो भी कम होती जा रही हैं, तो अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से ये काफी उचित समय है कि आप घर खरीदें। मुझे तो यही लगता है कि आने वाले समय में अगले 4-6 महीने में काफी अच्छा समय रहेगा घर खरीदने के लिए।
प्रोफेसर तिवारी, आपका SBS हिंदी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस साक्षात्कार में प्रस्तुत राय व्यक्ति विशेष के निजी विचार है, इनसे SBS न ही सहमत है और न ही असहमत।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।